श्री श्री मधीश डिवाइन ग्रेस अभिचरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील रूपाद की जय। नित लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा गोविंद ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ सुवंदन बलदेव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद अमेरिका आगमन महोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज द सुप्रीम डिवोटीज ऑल ग्लोरीज द सुप्रीम डिवोटीज ऑल ग्लोरीज द सुप्रीम डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांगा। हरे कृष्णा। तो आप लोगों को अभी सूचित किया गया कि आज कुछ विशेष दिन है। आज बहुत ही विशेष पवित्र दिन है। क्या है कौन बताएगा आज क्या विशेष पवित्र दिन है? श्रील प्रभुपाद का अमेरिका में आगमन हुआ, पदार्पण, उनके चरण अमेरिका की भूमि पर पड़े, तो ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना है। और आज पूरे 50 साल हो गए। हरि बोल। 1965 में प्रभुपाद आज के दिन अमेरिका पहुंचे थे। तारीख के हिसाब से तो दूसरी तारीख है, वो 19 सितंबर थी, लेकिन तिथि के हिसाब से आज का वो दिन है। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद लीलामृत, प्रभुपाद का जो जीवन चरित्र है ये इतनी मोटी पुस्तक में लिखा हुआ है। एक नहीं है, दो हैं, ये प्रथम भाग है। तो इसको पढ़ना है, ये पढ़ने लायक पुस्तक है। इसमें से मैं उस घटना को पढ़ के सुनाऊंगा। जो आज के दिन हुई थी 50 साल पहले। उन्नीस सितंबर को प्रभुपाद जहाज से उतरे थे। वो जहाज कौन सा था? हवाई जहाज नहीं था। कौन सा जहाज था? पानी का जहाज था, है ना? पानी का जहाज, वो भी मालवाहक जहाज था, है ना? तो हाँ, 19 सितंबर को प्रभुपाद उतरे थे। तो एक दिन पहले से मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, 18 सितंबर, ठीक है, एक दिन पहले। तो इसमें वर्णन, उस घटना का वर्णन आ रहा है। अब वे अमेरिका में थे, वे अमेरिका के एक प्रमुख नगर में थे जो अरबों खरबों की संपत्ति से, लाखों की जनसंख्या से परिपूर्ण था। संपत्ति भी अरबों खरबों की थी और संख्या भी लाखों में, जनसंख्या लाखों में और संपत्ति अरबों खरबों में। अपने ढर्रे पर बने रहने के लिए दृढ़ निश्चय था, अपने ढर्रे पर बना रहेगा, ये स्थान अपने ही ढर्रे में चलता रहेगा। मतलब ऐसा लग रहा था कि बदलेगा नहीं, इसी ढर्रे में चलता रहेगा। ढर्रा, क्या ढर्रा है? बस भागा दौड़ी, चूहे की तरह सब लोग जो है भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं, है ना, आवाज़ें हो रही हैं, ये आवाज़ें, वो आवाज़ें, कारखाने की आवाज़ें हो रही हैं, है ना, और पोल्यूशन, वायु प्रदूषण, ये सब, पानी प्रदूषित है, हवा प्रदूषित है, लोगों के दिमाग भी प्रदूषित हैं, सब प्रकार का प्रदूषण, चेतना का प्रदूषण, है ना, तो ये सब जो है ढर्रा है। प्रभुपाद ऐसे स्थान में गए हैं। अब सोचिए, एक व्यक्ति जो है ऐसे स्थान पर गया है जो कि पूर्ण कृष्ण भावना भावित है, और बाकी सब के सब कृष्ण भावना मृत में क्या है? शून्य है। मतलब घोर अंधकार, कृष्ण भावना मृत का जो है घोर अंधकार है, और एक व्यक्ति है जिसके पास कृष्ण भावना मृत का प्रकाश है। अब वो जो है इस स्थान में है, है ना। प्रभुपाद ने बोस्टन को, ये बोस्टन स्थान है, बोस्टन को एक विशुद्ध कृष्ण भक्त के दृष्टिकोण से देखा। तो कृष्ण का भक्त किस दृष्टिकोण से देखता है, ये आप समझिए। भारत से जब लोग जाते हैं अमेरिका में और बोस्टन नामक शहर में जाते हैं, तो किस दृष्टिकोण से देखते हैं? ओहो, कितनी चहल पहल है, स्वर्ग है ये तो, मुझे तो जो है यहीं पर ही रहना है, मुझे पैसा कमाना है, यहाँ तो बहुत पैसा है, गाड़ियाँ हैं, ये है, बहुत संपत्ति है, ये ऐसे देखता है। लेकिन जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो किस दृष्टिकोण से देखता है? नरक है वो देखता है, नरक है ये। ये सामान्य व्यक्ति भारत से जब जाता है अमेरिका तो क्या देखता है? ओहो, ये तो स्वर्ग है, यही स्वर्ग है, यही स्वर्ग है, यही स्वर्ग है, है? लोग ऐसे देखते हैं। लेकिन प्रभुपाद क्या देखते हैं? ये तो नरक है, है ना। कृष्ण भक्त, एक विशुद्ध कृष्ण भक्त के दृष्टिकोण से प्रभुपाद ने देखा। क्यों? विशुद्ध कृष्ण भक्त हैं वो, उन्होंने नारकीय नागरिक जीवन को देखा। नागरिक जीवन कैसा है? नारकीय है। इस नगर के लोगों का जीवन कैसा है? नारकीय है। यहाँ कोई हरे कृष्णा नहीं बोलता है, है? पी पी पौ पौ, क्या क्या ये सब आवाजें हो रही हैं, है? कहाँ हरे कृष्ण की आवाज हो रही है? कहीं हरे कृष्ण की आवाज नहीं हो रही है, है? सीताराम की आवाज नहीं हो रही है, जगन्नाथ की आवाज नहीं हो रही है, पी पी पौ पौ पे पे, है? सब ऐसे ही आवाज हो रही है। तो उन्होंने क्या देखा प्रभुपाद ने? नारकीय नागरिक जीवन को देखा, भौतिक सुख की माया के प्रति समर्पित लोगों को देखा। एक व्यक्ति है जो कृष्ण को समर्पित है और बाकी सब के सब माया को समर्पित है। माया उनको जो है जैसे स्थान में रखती है उसी स्थान में रहेंगे। जैसे भक्त कहता है जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रखिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए है। और वो कहते हैं जाहि विधि राखे माया ताहि विधि रहिए, तो वो माया जो है कीड़ा बना देगी वहीं पर, तो कीड़ा बन करके रहेंगे। माया उनको जो है तिल चट्टा काकरोच बना के रखेगी, छिपकली बना के रखेगी, तो वही बन करके रही है माया। जाहि विधि राखे माया ताहि विधि रही है, तो वो पूर्ण रूप से माया को समर्पित हैं। तो प्रभुपाद ने देखा कि बिल्कुल उल्टा है, प्रभुपाद जैसे हैं कृष्ण को समर्पित, यहाँ बिल्कुल सब लोग उल्टे हैं। क्या देखा? उनका सेवा भाव और प्रशिक्षण उन्हें प्रेरित कर रहा था कि वे उन लोगों को दिव्य ज्ञान और कृष्ण भावनामृत का संदेश दें, फिर भी वे अपने आप को बहुत अक्षम अनुभव कर रहे थे। एक अकेला व्यक्ति और पूरी मेजोरिटी कैसी है? माया वाली। पूरी मेजोरिटी जो है क्या है? बहुमत माया का है और एक मत है कृष्ण का। कृष्ण को समर्पित एक व्यक्ति है केवल, और माया को समर्पित सब हैं। माया का बहुमत और कृष्ण का केवल एक मत, एक व्यक्ति है, है? अनुभव कर रहे थे। प्रभुपाद अपने को बहुत अक्षम और पतित और असमर्थ अनुभव कर रहे थे। प्रभुपाद अपने को क्या समझ रहे हैं? अक्षम, पतित और असमर्थ। ये भक्त की भावना होती है कि भक्त अपनी कभी भी शक्ति पर विश्वास नहीं करता, तभी उसको शक्ति मिलती है भगवान से। जो माया को समर्पित हैं वो अपनी शक्ति पर विश्वास करते हैं, अपनी शक्ति पर विश्वास करते हैं, उसको कहते हैं आत्मविश्वास। वो होता तो मिथ्या अहंकार है, उसी को वो कहते हैं आत्मविश्वास। लेकिन प्रभुपाद विनम्र हैं, अपने को पतित असमर्थ और अक्षम अनुभव कर रहे हैं। वे मात्र एक क्षुद्र भिक्षुक थे, क्षुद्र भिक्षुक भिखारी, क्षुद्र भिक्षुक थे, धन विहीन, पैसा नहीं है प्रभुपाद के पास, पैसा नहीं है। समुद्री यात्रा में वे दिल के दो दौरों से मुश्किल से बच पाए थे। दिल के दो दौरे पड़े थे प्रभुपाद को समुद्री यात्रा में। उस समय भी उनके साथ एक भी व्यक्ति नहीं था जो कि उनकी देखभाल करे। सुन रहे सब लोग ध्यान से, अभी ध्यान से सुनिए। प्रभुपाद जब समुद्री जहाज में आए तो 35 दिन की यात्रा या 36 दिन की यात्रा जो भी हो, 13 अगस्त को चले और आज 18 सितंबर है ना, तो 13 अगस्त को चले तो 19 दिन तो वो हो गए, हैं 18 दिन ये हो गए, 37 दिन प्रभुपाद बिल्कुल अकेले। समुद्री जहाज में जो कर्मचारी थे और कप्तान थे, प्रभुपाद ने अपने दिल के दौरे भी नहीं बताए किसी को, क्योंकि श्रीमती मुरारजी ने जब उनको टिकट दिया था अमेरिका जाने का, तो इस बात पर दिया था कि आप जो है स्वस्थ रहें, आप सुरक्षित रहें, तब मैं आपको टिकट देती हूँ। मतलब उनको डर था कि अगर मैं टिकट दूँ प्रभुपाद को और प्रभुपाद ने शरीर छोड़ दिया वहाँ जा करके, तो मेरे लिए कितनी कलंक की बात होगी। तो इसलिए वे कलंक नहीं लेना चाहती थी कि प्रभुपाद को भेजें अमेरिका और वहाँ प्रभुपाद शरीर छोड़ दें और उनके ऊपर जो है पूरा दोष लगेगा कि श्रीमती मुरारजी ने प्रभुपाद को जो है भेजा अमेरिका और प्रभुपाद वहाँ शरीर छोड़ गए। तो जब प्रभुपाद को दिल के द्वारे पड़े तो वो किसको बताते हैं? अगर वहाँ के कर्मचारियों को बताते तो वो क्या कहते कि क्यों मरने जा रहे हैं, क्यों मरने आए यहाँ पर? तो प्रभुपाद ने किसी को नहीं बताया, दिल के दो द्वारे पड़े, कृष्ण को ही केवल बताया और कृष्ण से ही प्रार्थना की रक्षा करने की। कुछ कहना है? हाँ नहीं नहीं, प्रभुपाद ने शरीर छोड़ा। आप व्यवहारिक बात में आइए कि प्रभुपाद को चिंता थी, अभी उनका शरीर छूट सकता था, उनको दिल के दौरे पड़े, उनका शरीर छूट सकता था, है ना। तो प्रभुपाद को चिंता थी और उन्होंने कृष्ण से प्रार्थना की कि आप ही रक्षा करिए मेरी। इस बात को समझिए, है ना। आप जो जिस दृष्टि से बोल रहे हैं वो दूसरी बात है, एक दृष्टि वो भी है समझने की, लेकिन अभी प्रभुपाद की स्थिति, उनकी अवस्था 70 वर्ष की है और कोई उनके साथ नहीं, उनकी देखभाल करने के लिए नहीं है, कोई दवाई देने के लिए भी नहीं है, ना वे किसी से बोल सकते हैं कि कोई दवाई दे। अभी बात नहीं करना, अभी समझने बात, क्योंकि हमें किताब पढ़ रहा हूँ उसी आधार पर ही बोल रहा हूँ सर। अभी बात नहीं करना है ना। नहीं नहीं नहीं, प्रभुपाद जी मेरे यहाँ बोल रहे हैं, प्रभुपाद बोल रहे हैं, अभी आप नहीं, आपको नहीं बोलना है, आप चुप रहिए बिल्कुल, यहाँ प्रभुपाद ही बोल रहे हैं। ये प्रभुपाद ही बोल रहे हैं, मेरे मुख से प्रभुपाद बोल रहे हैं, कोई और नहीं बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। हाँ तो ऐसी स्थिति में प्रभुपाद ने कृष्ण से प्रार्थना की कि मेरे आप रक्षा करिए, क्योंकि प्रभुपाद को अपने शरीर की चिंता नहीं थी कि शरीर छूट जाएगा, उनको इसकी चिंता नहीं थी, लेकिन प्रभुपाद को चिंता थी इसकी संदेश, जो कृष्ण का संदेश उनको देना है, उन्होंने ये भार लिया अपने हाथों में है, और ये कृष्ण के लिए बड़ी इज्जत, कृष्ण की भी इज्जत की बात है कि कृष्ण के बल पर उन्होंने ये वचन दिया था कि मैं सुरक्षित रूप से वापस आऊँगा, और अब जो है उनको इस जीवन के लिए खतरा हो गया। समुद्री जहाज में जो लहरें उठ रही हैं उससे उनकी तबीयत खराब हो रही है। तो इस तरह से प्रभुपाद जो है अभी यहाँ पर आया है कि वे जो है मुश्किल से बच पाए। प्रभुपाद की जीवन की रक्षा बड़ी मुश्किल से हुई और कृष्ण ही की। दिल के दो दौरे पड़े किसी व्यक्ति को और कोई ना कोई दवाई ना कोई देखभाल करने वाला, है ना। कृष्ण ही रक्षा की थी और कृष्ण ही कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम चिंता मत करो, है ना। और कृष्ण ही समुद्र को इतना शांत कर दिया कि कभी विश्व के इतिहास में कभी भी समुद्र ऐसा शांत नहीं हुआ। कृष्ण किया प्रभुपाद के जीवन की रक्षा करने के लिए, एक व्यक्ति के जीवन की रक्षा करने के लिए पूरे समुद्र को ही स्थिर कर दिया। ये कृष्ण ही कर सकते हैं और कौन कर सकता है, कृष्ण का इतना बड़ा नियंत्रण। तो यहाँ पर है कि प्रभुपाद मुश्किल से बच पाए थे दिल के दो दौरों से। वे अब भाषा भी दूसरी बोलते हैं, प्रभुपाद की भाषा भी दूसरी है, विचित्र वेश में हैं। अभी उनकी जो ये गेरुआ कपड़े पहने हैं प्रभुपाद, तो इसमें जो है कोई महत्व नहीं देता गेरुआ कपड़ों को। यहाँ तो भारत में गेरुआ कपड़े किसी की भी देखते हैं लोग तो जो है बड़ा महत्व देते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन वो तो माया का पूरा का पूरा माया का स्थान है। गेरुआ कपड़े वो पहने हुए हैं तो ऐसी स्थिति में भी कोई नहीं मतलब कुछ महत्व देगा कि कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति है ये, कोई नहीं ध्यान देगा। फिर भी वे लोगों को सिखाने आए, है ना, कि मांस भक्षण अवैध यौन संबंध है, मादक द्रव्य सेवन और युद्ध क्रीड़ा छोड़ दें। ये चार प्रकार के पाप कर्मों को छोड़ने के लिए प्रभुपाद शिक्षा देने के लिए आए हैं वहां पर। और कलयुग को जो है परीक्षित महाराज ने यही चार स्थान दिए, मांसाहार, व्यभिचार, जुआ और नशा, इन्हीं में ही कलयुग को स्थान प्राप्त हुआ है। और यही जो है यहाँ पर जो है मतलब खूब पनप रहे हैं, ये चार प्रकार के जो दुष्कर्म हैं यही यहाँ पनप रहे हैं और प्रभुपाद यहाँ पर सिखाने आए हैं कि ये बंद करो, है ना। ऐसी स्थिति में और भगवान कृष्ण की उपासना करें, केवल इतना नहीं कि चार प्रकार के पाप कर्म छोड़ें, इतना ही नहीं है, इतना पर्याप्त नहीं है, बल्कि कृष्ण की उपासना करें, ये जो है प्रभुपाद शिक्षा देने आए हैं। बल्कि प्रभुपाद ने ये भी मना नहीं किया कि ये बंद करो, अगर प्रभुपाद कहते कि ये बंद करो तो कोई प्रभुपाद के पास आता ही नहीं, है ना। तो प्रभुपाद ने ये भी बंद नहीं कराया, प्रभुपाद ने कृष्ण की उपासना कराई, यानी हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन कराया। और हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन से जब उन्होंने खुद ही पूछा कि स्वामी जी आपके शिष्य बनने के लिए क्या कुछ नियम है, तो प्रभुपाद ने कहा कि मांसाहार नहीं, जुआ नहीं, नशा नहीं, व्यभिचार नहीं, उन्होंने छोड़ दिया। तो प्रभुपाद जो है जानते थे कि शक्ति किसमें है, शक्ति हरिनाम है। अगर हरिनाम ना दें है और कहें कि तुम पाप कर्म छोड़ो तो कोई पाप कर्म नहीं छोड़ेगा, वो कहेंगे आप अमेरिका छोड़ो। अगर प्रभुपाद कहेंगे कि तुम लोग जुआ छोड़ो, नशा छोड़ो, व्यभिचार छोड़ो, मांसाहार छोड़ो, तो वो क्या कहेंगे, आप अमेरिका छोड़ो, है। तो प्रभुपाद ने जो है किसी को मना नहीं किया ये सब छोड़ने के लिए। प्रभुपाद ने कहा कि जोड़ो, ये हरिनाम जोड़ो, है, कुछ मत छोड़ो, ये जोड़ो, क्या जोड़ो, हरिनाम जोड़ो। तो प्रभुपाद हरिनाम कीर्तन कराते थे उनसे, है ना, और उससे जो है हरिनाम को जोड़ा तो अपने आप छोड़ दिया उन्होंने, ये चारों प्रकार के पाप कर्म अपने आप छोड़ दिए, है ना। और इतनी अच्छी तरह से छोड़े उन्होंने कि भारत में भी इतनी अच्छी तरह से लोग नहीं छोड़ पाते, है ना। अब वहाँ विदेशों में इतनी ठंड पड़ती है लेकिन चाय कॉफ़ी भी नहीं पीते, जबकि यहाँ तो चाय कॉफ़ी बड़ी सामान्य बात है, हर कोई चाय कॉफ़ी पीता है। इतना जो है मतलब उनका कठोर नियम और जो है शुद्धता के जो है बड़े कठोर नियमों का पालन कर रहे हैं। तो कारण क्या है, हरिनाम का प्रभाव, है ना। तो प्रभुपाद क्या कर सकते हैं उन लोगों के लिए, तो कृष्ण का कोई महत्व नहीं है। अगर कृष्ण की बात कहेंगे तो वो क्या कहेंगे, ये तो हिंदुओं का कोई देवता है, हमारे हमारे काम का नहीं है। अगर प्रभुपाद कहेंगे कि आप लोग कृष्ण की उपासना करो तो क्या कहेंगे, ये तो जो है पौराणिक देवता है, हिंदुओं का देवता है, हमारे किसी काम का नहीं है, है ना। प्रभुपाद क्या कर सकते हैं, असहाय होकर उन्होंने सीधे भगवान से अपने मन की बात कही। प्रभुपाद ने सीधे अपने मन से भगवान से अपनी बात कही, अपने मन की बात सीधे भगवान से कही, सीधे भगवान से, है ना। वो देख रहे हैं भगवान है ना, जो माम बसते सर्वत्र है, जो सर्वत्र मुझे देखता है। तो प्रभुपाद ने जो है सीधे भगवान से बात कही, ना जहाँ भी कठिनाई हो तो भक्त किसका स्मरण करता है, कृष्ण का ही स्मरण करता है। सीधे भगवान से अपने मन की बात कही, मेरी कामना है कि आप इनका उद्धार करें। प्रभुपाद क्या कहते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। प्रभुपाद ने कृष्ण से कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी तो कोई शक्ति नहीं है, अब आप ही इनका उद्धार करिए, आप इनका उद्धार करें, मैं आपके आशीर्वाद की याचना करता हूँ जिससे मैं इन्हें आश्वस्त कर सकूँ, और इन्हें आश्वस्त करने के लिए वे भगवान के पवित्र नाम की शक्ति और श्रीमद् भागवत पर निर्भर होंगे। तो प्रभुपाद के पास एक तो हरि नाम की शक्ति थी और दूसरा क्या था, श्रीमद् भागवत के तीन खंड थे, श्रीमद् भागवत के तीन खंड के 260 थे। अभी तो श्रीमद् भागवत का पहला स्कंद एक ही खंड में आता है, इन प्रभुपाद ने उस समय प्रथम स्कंद के तीन खंडों में प्रथम स्कंद छापा था। अभी तो जो है 12 स्कंद तैयार हो चुके हैं और पूरा सेट आता है 18 खंडों में, 12 स्कंद श्रीमद् भागवत के। लेकिन उस समय प्रभुपाद ने जो है पहले स्कंद के ही तीन खंड छापे थे और 260 अपने साथ लेके गए थे। तो ये उनके पास बल था कि वे किसी को पेश कर सकते हैं कि देखो ये मेरे पास ये है, अगर कोई प्रश्न करे कि आपके पास क्या है, आपके पास क्या ज्ञान है, है ना, है? और उसके पास सुनने के लिए समय नहीं है तो प्रभुपाद दिखा सकते हैं मेरे पास ये है, है? अगर तुम्हारे पास समय है तो इसको देखो, है? इसको पढ़ो, मेरे पास ये है। तो प्रभुपाद के पास श्रीमद् भागवत का ये था, बल था। ये दिव्य वाणी उनके हृदयों से भौतिक सुखों की इच्छा को दूर कर देगी और उनमें कृष्ण के लिए प्रेमा भक्ति जागृत कर देगी। बोस्टन की सड़कों पर चलते हुए प्रभुपाद जानते थे कि वहाँ तमोगुण और रजोगुण की शक्ति का प्रभुत्व था, किंतु दिव्य प्रक्रिया में उनका विश्वास था। वे छोटे थे किंतु भगवान असीम थे। प्रभुपाद अपने को क्या देख रहे हैं, मैं बिल्कुल छोटा सा व्यक्ति हूँ, ना मेरे पास पैसा है, ना मेरे पास कोई शक्ति है और ना मेरे पास कोई अनुयायी है, ना धन, ना जन, ना बल, कुछ नहीं है, तो बिल्कुल तुच्छ हैं, बहुत छोटे हैं। लेकिन वे छोटे थे किंतु भगवान असीम थे और भगवान कृष्ण थे जो उनके प्रिय सखा थे, वो प्रिय मित्र हैं, प्रभुपाद के प्रिय मित्र हैं, है? और कृष्ण कैसे हैं, असीम, कृष्ण असीम है, कृष्ण की असीम शक्ति है। तो इस अमेरिका में या न्यूयॉर्क में जितनी भी जनसंख्या है, हाँ, तो कृष्ण का जो प्रभाव है और नियंत्रण, हाँ, उससे करोड़ों करोड़ों गुना है कृष्ण का, है ना। और कृष्ण प्रभुपाद के प्रिय मित्र हैं, प्रभुपाद इसलिए कृष्ण से प्रार्थना करते हैं। अब आज के दिन जलदूत 19 सितंबर को न्यूयॉर्क बंदरगाह पहुंचा और उसने ब्रुकलिन घाट पर 17वीं सड़क पर लंगर डाला। 17वीं सड़क पर जहाज में क्या डाला, लंगर डाला। लंगर डाला तो फिर आगे नहीं जाएगा, रुक जाएगा, लंगर डाला। भक्ति वेदांत स्वामी ने विस्मयकारी मैनहट्टन क्षितिज को, एम्पायर स्टेट इमारत को और पहले के लाखों यात्रियों और प्रवासियों की भांति स्टेचू ऑफ लिबर्टी को देखा, स्वतंत्रता की प्रतिमा, उसको स्वतंत्रता मानते हैं, स्वतंत्रता की प्रतिमा। उनको पता नहीं है कि स्वतंत्रता है ही नहीं, माया के द्वारा वो कितने बंधे हुए हैं, जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी, है ना, तो जानते नहीं है कि असली स्वतंत्रता क्या होती है। वो स्वतंत्रता की एक मूर्ति उन्होंने जो है बना करके रखी है कि भाई ये स्वतंत्रता हमारे प्राप्त हुई है और ये स्वतंत्रता की मूर्ति है। श्रील प्रभुपाद एक वृंदावन वासी का वेश धारण किए थे, ब्रजवासी, उन्होंने कंठी माला और सादी सूती धोती धारण कर रखी थी। कंठी माला है ना, जिसको वहाँ के निवासी कुछ नहीं समझते क्या है, है ना। उनके हाथ में जपमाला थी और एक पुरानी चादर ओढ़े थे। आज का दिन उनका रंग सुनहरा, सिर घुटा हुआ, पीछे शिखा, मस्तक पर सफेद वैष्णव तिलक, सफेद रबर की नुकीली चप्पलें पहने हैं जो भारत के साधुओं के लिए असामान्य बात नहीं है, किंतु न्यूयॉर्क में ऐसे वैष्णव के समान व्यक्ति को प्रकट होते किसी ने कभी नहीं देखा था, या उसका स्वप्न भी नहीं देखा, सपने में भी नहीं सोचा कि कोई व्यक्ति ऐसा भी न्यूयॉर्क में आएगा और उसका जो है इतना बड़ा प्रभाव होगा पूरे विश्व में। इस समय जो है कोई नहीं समझ रहा है, हैं, कितने मतलब वैसे हैं साधारण जैसे, है ना। ये संभवतया पहले वैष्णव सन्यासी थे जो न्यूयॉर्क में अपने निजी वेशभूषा में पहुंचे थे, सबसे पहले अपने निजी वेशभूषा में पहुंचे न्यूयॉर्क में, पहले वैष्णव सन्यासी। नहीं तो और जो सन्यासी हैं वो पहले से ही उसी वही वेशभूषा धारण कर लेते हैं, उन्हीं की तरह हैट पैंट शर्ट सब जो है उस तरह से जाते हैं। पहले वैष्णव सन्यासी अपने निजी वेशभूषा में पहुंचे, पर न्यूयॉर्क के लोग ऐसे विचित्र नवागंतुकों पर विशेष ध्यान ना देने की कला में कुशल हैं। उनकी कुशलता इसी में है कि वे ध्यान नहीं देते हैं, ये उनकी बड़ी कला है। अगर सामने देख दो ऐसे करेंगे ऐसे, ये उनके पास ये कला में कुशल है, इस कला में कुशल है, ध्यान ना देने की कला में बहुत कुशल है। ऐसा व्यक्ति तो कितना मतलब भगवान के धाम से आया है, एक व्यक्ति समझो वैकुंठ का एक जो है व्यक्ति आया हुआ है, लेकिन वो जो है बहुत कुशल है इस कला में, ध्यान ना देने की कला में कुशल है। अगर सामने आ जाए तो ऐसे करेंगे, है ना। श्रील प्रभुपाद को केवल अपना भरोसा था, उनके एक जामिन श्रीमान अग्रवाल पेंसिल्वेनिया में कहीं रहते थे। जामिन मतलब जिन्होंने प्रायोजन किया प्रभुपाद को, ना जामिन प्रभुपाद को लेने अवश्य ही कोई आएगा। यद्यपि जहाज से उतरकर घाट पर चलते समय मुझे मालूम नहीं था कि बाएं मुड़ना है या दाएं, तो उनको लेने कोई नहीं आया, प्रभुपाद को लेने कोई नहीं आया। श्रीमान अग्रवाल प्रभुपाद ने सोचा था कि वो आएंगे या किसी को भेजेंगे, लेकिन उन्होंने देखा कि कोई नहीं आया, है ना। प्रभुपाद ने अपना फोटो भी भेज दिया था, श्रीमान अग्रवाल को अपना फोटो भी भेज दिया था कि मैं आ रहा हूं तो मुझे पहचान लेना। तो प्रभुपाद तो नहीं पहचानते श्रीमान अग्रवाल को, तो कोई अगर लेने आया तो वो पहचाने और प्रभुपाद को बुलाए, प्रभुपाद को इशारा करे आइए आइए, हैं, या जो है वो होते हैं ना साइन बोर्ड, उसमें नाम लिख देते हैं, हैं, तो अपना वो दिखाते हैं साइन बोर्ड कि ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी का स्वागत है, तो वो पढ़ लेंगे साइन बोर्ड कि भाई ये मुझे बुला रहे हैं, तो चेहरे से तो नहीं जानते हैं, हैं, कि भाई कौन किसने मुझे बुलाया, लेकिन किसी का भी जो है प्रभुपाद को संकेत नहीं मिला कि उन्हें कोई बुलाने आया है, कोई लेने आया है, है ना। गोदी की सारी औपचारिकताएं पूरी कर लेने पर पेंसिल्वेनिया स्थित अग्रवाल परिवार द्वारा भेजे गए यात्रिक सहायता संस्था का एक प्रतिनिधि उन्हें मिला। उसने प्रभुपाद को मैनहट्टन के सिंधिया टिकट कार्यालय में उसके साथ जाने को कहा, जहाँ वे भारत की अपनी वापसी यात्रा के लिए आरक्षण करा सकें। सिंधिया कार्यालय में प्रभुपाद की बात जोसेफ फॉरेस्टर नामक टिकट एजेंट से हुई, जो इस असाधारण यात्री की वैष्णव वेशभूषा, उसके अल्प सामान और प्रत्यक्ष विपन्नता से प्रभावित हुआ। उसने श्रील प्रभुपाद को एक पुजारी समझा, पुजारी भाई पूजा करने वाले पुजारी, यही समझा। उसने भी नहीं सोचा कि अपनी वाणी की कितनी शक्ति है और अपनी वाणी के द्वारा कितने लोगों के जीवन को ये बदलेंगे। पुजारी क्या करता है, खाली पूजा करता है और अपने अपना जो है जीवन की आवश्यकताएं पूरी करता है, वो किससे बात करेगा, किसको बताएगा, क्या सिखाएगा। तो उसने समझा ये एक पुजारी हैं, है ना। सिंधिया के यात्रियों में अधिकतर व्यापारी या परिवार वाले लोग होते थे, इसलिए फॉरेस्टर ने कभी ऐसे यात्री को नहीं देखा था जो भारत की पारंपरिक वैष्णव वेशभूषा धारण किए हुए हो। उसने श्रील प्रभुपाद को एक सुखद सज्जन के रूप में पाया। सुखद सज्जन कैसा है, एक सज्जन है वो बहुत सुखद है। सुखद का मतलब है कि जरा भी उसमें कठोरता नहीं है, कोई भी बात पूछें तो सरलता से उत्तर देना है, प्रसन्नता से उत्तर देना है, हैं, और जैसा आप बताएं वैसा ही वो समझेगा, है ना। इस तरह से देखा सुखद सज्जन जिसने जल दूत से यात्रा के दौरान प्राप्त उत्तम आवास और सद्व्यवहार की प्रशंसा की। प्रभुपाद ने फॉरेस्टर से भारत लौटने वाले किसी जहाज पर अपने लिए स्थान सुरक्षित करवाने का अनुरोध किया। उनकी योजना 2 महीने में भारत लौटने की थी, क्या समझे, 2 महीने का ही उनको मिला था समय, 2 महीने के बाद वापस लौटना था, और प्रभुपाद ने भी सोचा था कि 2 महीने के बाद वापस लौटना भी है। प्रभुपाद ने भी नहीं सोचा था कि कृष्ण उनसे कितना बड़ा काम कराने वाले हैं, जबकि वो शरीर छोड़ने वाले थे और कृष्ण उनकी कैसे रक्षा कर ली और कितना ऊंचा उठा दिया प्रभुपाद को, प्रभुपाद ने भी नहीं सोचा था, है ना। तो प्रभुपाद नहीं सोचा था कि दो महीने के लिए मुझे समय मिला है, दो महीने के बाद मैं वापस भारत जाऊंगा। उन्होंने श्रीमान फुरस्ता से कहा कि वे उनसे संपर्क बनाए रखेंगे। श्रील प्रभुपाद के पास नकद केवल 40 रुपए थे, नकद केवल 40 रुपए थे, जिसे वे स्वयं न्यूयॉर्क में कुछ घंटों का खर्च कहते थे। कुछ घंटों का खर्चा है, खत्म हो जाएंगे 40 रुपए। इसके अतिरिक्त उनके पास $20 और थे, जिसे उन्होंने कप्तान पंड्या को भागवत के 3 खंड बेचकर प्राप्त किया था। $20 उनके हाथ में छाता, एक छाता और एक सूटकेस था, और आगे आगे यात्रिक सहायता का प्रतिनिधि उन्हें ले जा रहा था। इस तरह वे पोर्ट अथॉरिटी बस अड्डे की ओर बढ़े, जहाँ से उन्हें बटलर के लिए यात्रा आरंभ करने की व्यवस्था करनी थी। तो बहुत लंबी कथा है, मैंने आपको थोड़ा सा बताया आज के दिन का जो दृश्य हुआ, प्रभुपाद कैसे पहुँचे और फिर उन्होंने पूरे विश्व में कैसी क्रांति मचा दी। मृदंग शब्द है, करताल नाद है, श्री कृष्ण संकीर्तनम उत्सवम यहाँ स्थापयद वर्ष सहस्र वृंदम नमामि तम श्री प्रभुपाद देवम, कि पूरे विश्व में संकीर्तन का उत्सव स्थापित किया उन्होंने। कैसे? मृदंग के शब्दों के साथ और करताल की ध्वनि के साथ। मृदंग शब्द है, करताल नाद है, श्री कृष्ण संकीर्तनम उत्सवम यहाँ, श्री कृष्ण संकीर्तन का उत्सव स्थापित किया, वर्ष सहस्त्र वृंदम हजारों वर्षों के लिए स्थापित कर दिया। ये संकीर्तन उत्सव मृदंग और करताल के साथ संकीर्तन का जो उत्सव है, ये प्रभुपाद ने मतलब केवल ऐसा नहीं कि भाई कुछ दिखाया चमत्कार और जब चले गए तो सब लोग जो है भूल जाएं। होता है कोई तमाशा करके दिखाता है, मान लो संकीर्तन करके दिखाते प्रभुपाद जी और लोग कहते हैं हाँ बढ़िया है, और फिर जो है प्रभुपाद चले जाते और सब जो कहते हैं हो जाता, कुछ भी कोई संकीर्तन ना करता। ऐसे होते हैं ना, ऐसे बहुत से खेल होते हैं, लोग खेल दिखा के चले जाते हैं बढ़िया है, नाच गाना सब करके चले जाते हैं और बढ़िया नाच गाना हुआ और फिर सब जो कहते हैं रहता है। ऐसा नहीं, स्थापित किया प्रभुपाद, और स्थापित 1 साल 2 साल के लिए नहीं, हजारों वर्ष के लिए स्थापित कर दिया प्रभुपाद ने। स्थापयद वर्ष सहस्र वृंदम नमामि तम श्री प्रभुपाद देवम, तो ऐसे प्रभुपाद को मैं नमस्कार करता हूँ। तो इस तरह से हमने कुछ चर्चा की आज के दिन की, और चूंकि विश्व हरिनाम उत्सव का आज अंतिम दिन है, 10 दिन का था इस वर्ष, पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मंडल संघ ने 10 दिन का हरिनाम उत्सव मनाया है, आज अंतिम दिन है उसका। तो हरिनाम की महिमा से संबंधित हम कुछ बातें सुनेंगे, तो आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए। देखिए ये जो हरि नाम है, इसमें हम लोग 16 नाम बोलते हैं, इनका विशेष महत्व है। वैसे तो कोई राम नाम वैसे ही उच्चारण करता है, तो इसमें भी बड़ी शक्ति है, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र जो है 16 नामों का, ये विशेष रूप से कलयुग में प्रभावशाली है। इस विषय में अनेक शास्त्रों में बातें लिखी हैं, तो इसको जो है मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। पहला तो है ज्ञानामृत सार नाम का एक ग्रंथ है, उसमें लिखा है शिष्य श्योदंग मुखस्थस्य हरेर नामानि षोडशः संस्राव्यय ततो दध्यान मंत्रम त्रैलोक्य मंगलम। इसका मतलब ये है कि हरि के 16 नामों को जो है सबसे पहला कार्य यही है कि शिष्य को हरि के 16 नाम सुनाएं, उसके बाद ही फिर दूसरे मंत्र दिए जाएंगे। शिष्य उदंग मुखत से उत्तर की ओर मुख करके शिष्य का उसके कान में हरि के 16 नाम सुना करके इसके बाद फिर अन्य मंत्र दिए जा सकते हैं, नहीं तो कोई दूसरा मंत्र नहीं दिया जा सकता। तो हम लोग सबसे पहले हरि नाम मंत्र ही ग्रहण करते हैं, है ना। तो हरि नाम दीक्षा सबसे पहले होती है जिसमें 16 नाम का जो मंत्र है वो हम लोग सुनते हैं। और दीक्षा के समय ये सुनाया भी नहीं जाता 16 नाम। ये 16 नाम का अभ्यास आप करते हैं और एक साल तक करते हैं, 16 माला करते हैं, 4 नियम का पालन करते हैं, तब दीक्षा मिलती है। और दीक्षा का मतलब यही होता है कि आप जीवन भर करेंगे ये 16 माला और 4 नियमों का पालन, आप जीवन भर करेंगे। दीक्षा में आपसे ये वचन लिया जाता है, है ना। तो ये हरिनाम दीक्षा, उसके बाद फिर दूसरे मंत्र दिए जाते हैं, है ना। इसके बाद ब्रह्म अमल नामक एक ग्रंथ है, उसमें शिव जी सुना रहे हैं, शिव जी सुना रहे हैं पार्वती को। इसको सुनिए, बहुत ही आश्चर्य की बात है। शिव जी कहते हैं, हरिम बिना नास्ति किंचित पाप निस्कात्मा पाप निस्तार कम कलौ। कलयुग में पापों से छुड़ाने के लिए हरि के बिना और कोई दूसरा नहीं है। तस्मा लोको धारणार्थम हरि नाम प्रकाशे, इसी लोगों का उद्धार करने के लिए हरि नाम का प्रकाशन करना चाहिए, हरि नाम को प्रकाशित करना चाहिए। लोगों को उद्धार करने के लिए कलयुग में हरि नाम प्रकाशन करना चाहिए। कौन कह रहे हैं ये? शिव जी कह रहे हैं, शिव जी कह रहे हैं। सर्वत्र मुच्यते लोको महापापात कलो योगे, कलयुग में सर्वत्र हर स्थान में लोग महापापों से मुक्त हो जाएंगे इस हरि नाम के द्वारा। तो शिव जी ये कह रहे हैं, है ना। अब जो शिव जी के जो मानने वाले हैं, जो शिव जी की पूजा करने वाले हैं, तो उनको समझना चाहिए कि शिव जी की शिक्षा क्या है। शिव जी तो स्वयं बता रहे हैं कि हरि नाम प्रकाशित करो, है ना। तो अगर शिव जी की शिक्षा को मानना है तो फिर जो है हमें हरि नाम को ही प्रकाशित करना चाहिए, हरि नाम का ही प्रचार करना चाहिए। फिर शिव जी कहते हैं, हरे कृष्ण पद द्वंद्वम कृष्णेति चा पद द्वयम तथा हरे प्रतिद्वंद्वम हरे राम इति द्वयम् तदन्ते च महादेवी राम राम द्वयम् वदेत हरे हरे ततो ब्रूयात हरि नाम समुद्धरेत। शिव जी क्या इस तरह से समझा रहे हैं कि आप हरे कृष्ण मंत्र को दूसरे प्रकार से बोल ही नहीं सकते। शिव जी कहते हैं कि कैसे बोलना है, हरे कृष्ण पद द्वंद्वम, हरे कृष्ण इस पद को दो बार बोलना है पहले, कैसे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, ठीक है। इसके बाद कृष्णेति च पद द्वयम, फिर कृष्ण पद को दो बार बोलना है, कैसे, कृष्णा कृष्णा, फिर तथा हरे पद द्वंद्वम, फिर हरे पद को दो बार बोलना है हरे हरे, फिर हरे राम इति द्वयम, फिर हरे राम को दो बार बोलना है हरे राम तदंते चा महादेवी राम राम द्वयम मदे, उसके बाद हे महादेवी राम राम ये दो बार बोलना है, हरे हरे ततो ब्रूयात उसके बाद हरे हरे बोलना है, हरि नाम शरीर, तो हरि नाम का इस प्रकार से उच्चारण होता है। तो शिव जी ने इस तरह से बताया है कि आप और दूसरी तरीके से बना नहीं सकते। कोई कहता है कि नहीं ऐसे करना है, ऐसे करना, ऐसे नहीं वैसे, वैसे नहीं ऐसे, लेकिन नहीं ऐसे ही कैसा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और दूसरी तरीके से हो नहीं सकता, है ना। शिव जी बता रहे हैं ये, और फिर कहते हैं महामंत्रम च कृष्णस्य सर्व पापे प्रणाशकम, ये कृष्ण का महामंत्र है जो सब पापों को नाश करता है, सब पापों का नाश करता है, ये शिव जी ने बताया है। और किससे बता रहे हैं, महादेवी, तो महादेवी कौन है, उन्हीं की पत्नी, अपनी पत्नी को बताते हैं, है ना। तो जो व्यक्ति अपनी पत्नी को बताए कोई बात तो वो सबसे महत्वपूर्ण बात होगी ना, तो श्री जी बता रहे हैं अपनी पत्नी को तो सबसे महत्वपूर्ण बात है ना। फिर राधा तंत्र में, राधा तंत्र में एक प्रश्न आता है जो महा माया है, उसी से किसी भक्त ने प्रश्न किया। महामाया से ही एक भक्त प्रश्न कर रहा है, क्या श्रृणु मातर महामाये विश्व बीज स्वरूपिणी। हे माता, हे महामाया, हे विश्व की बीज स्वरूपिणी सुनो। वो भक्त कह रहा है कि हे माता, हे महामाया, हे विश्व की बीज स्वरूपिणी सुनो। हरिनाम नो महामाये क्रमम वद सुरेश्वरी। हे देवताओं की ईश्वरी, आप हरि नाम का क्रम बताइए मुझे। एक भक्त ने महामाया से पूछा, क्या पूछा कि हरि नाम का क्रम बताओ मुझे क्या है। कोई ऐसे बोलता, कोई वैसे बोलता, कोई इधर उधर, कई तरह की थे। तो महामाया ने बताया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, द्वात्रिंशत अक्षराण्येव कलो नामानि सर्वदम। तो महामाया नहीं बताया, महामाया नहीं बताया उस भक्त को, क्या बताया कि ये 32 अक्षर कलो कलयुग में सब कुछ देने वाले हैं। द्वात्रिंशत अक्षराण्येव, ये जो 32 अक्षर हैं, 16 नाम है और प्रत्येक नाम में 2 अक्षर हैं, तो कितने अक्षर हुए, 32। तो ये 32 अक्षर कलो नाम आने सर्वदम, 32 अक्षर है जिनमें ये नाम 16 नाम कलियों में सब कुछ देते हैं। एतन मंत्रम सुत श्रेष्ठ है प्रथमम श्रुणयान रहा। मनुष्य को ये मंत्र सबसे पहले सुनना चाहिए। फिर उसी में ही महामाया कहती हैं, हरि नाम ना बिना पुत्र दीक्षा चा विफला भवे। हरि नाम के बिना हे पुत्र दीक्षा विफल हो जाए। इसलिए सबसे पहले दीक्षा कौन सी होना चाहिए, हरि नाम। हरि नाम के अलावा कोई भी दीक्षा क्या होगी, विफला, मतलब कोई फल नहीं। हरि नाम ना बिना पुत्र, और वो हरि नाम क्या है, ये 16 नाम का 32 अक्षर 16 नाम का है। हरि नाम ना बिना पुत्र दीक्षा चा विफला भवे। हाँ बोलो बोलो। हरे हरे ये अक्षर हैं, ये जो ये नाम है भगवान के, ये 16 नाम इस तरह से बनाए गए हैं कि जिससे आप को बोलने में सुविधा है, आपकी सुविधा के लिए। तो हरे और कृष्ण और राम ये इस मंत्र के 3 बीज हैं, ठीक है ना। हरे शब्द जो है ये संबोधन है हरा का, और हरा जो है भगवान की आलादनी शक्ति है। राम के साथ में जो हरा हैं वो उनकी आलादनी शक्ति हैं, तो उनको सीता समझ सकते हैं। तो हरे राम जब बोलते हैं तो सीता राम है, जब हरे कृष्ण बोलते हैं तो राधा कृष्ण है, ठीक है ना। तो हरा का जो है संबोधन होता हरे। गुरुदेव मुखाश्रुत्वा हरि नाम पराक्षरम। तो ये हरि नाम के जो परम अक्षर हैं ये सुन करके ब्राह्मण छत्रविद शूद्रा त्रुत्वा नाम पराक्षरम दीक्षाम कुर्यो सुश्रेष्ठ है महाविद्या सुंदर है। तो महामाया जो है दया करके अपना पुत्र मान करके उस भक्त को ये कह रही है कि इस प्रकार से है पुत्र दीक्षा होनी चाहिए। फिर पद्म पुराण में लिखा है, पद्म पुराण में लिखा है, द्वात्रिंशत अक्षर मंत्रम नाम षोडशकान्वितम प्रजपन वैष्णवो नित्यम राधा कृष्ण स्थलम लभे। क्या मतलब है, 32 अक्षर वाला जो मंत्र है जिसमें 16 नाम भी है। अब कौन सा मंत्र हो सकता है ऐसा जिसमें 32 अक्षर हो और 16 नाम हो, यही है, और कोई दूसरा मंत्र आपको नहीं मिलेगा। 32 अक्षर वाला और 16 नाम वाला जो मंत्र है इसका जप करते हुए वैष्णव, निरंतर जप करते हुए वैष्णव राधा कृष्ण स्थलम लभेत, राधा कृष्ण का स्थल को प्राप्त कर लेता है। हरि बोल। इस मंत्र का जप करते हुए वैष्णव राधा कृष्ण का स्थल प्राप्त, राधा कृष्ण के स्थान में पहुंच जाता है। फिर ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मांड पुराण में लिखा है, ब्रह्मांड पुराण के राधा हृदय खंड में, ब्रह्मांड पुराण के अलग अलग खंड हैं, राधा हृदय खंड भी है, उसमें लिखा है वेद व्यास जी से रोम हर्षण ने प्रश्न किया है। रोम हर्षण व्यास जी के शिष्य, तो रोम हर्षण ने व्यास जी से प्रश्न किया, यह त्वया कीर्तितम नाथ है हरि नामेति संगीतम, कि हे नाथ जो आपने हरि नाम के नाम से जाने वाला जाना जाने वाला मंत्र जो आपने बताया है, हरि नाम से जो है जो जाना जाता है ऐसा मंत्र जो आपने बताया है, मंत्रम ब्रह्म पदम सिद्धि करम तद्वद नो विभो, तो वो मंत्र जो ब्रह्म पद की सिद्धि कर दे वो मुझे बताइए। उस मंत्र का नाम तो बताया आपने, क्या है वो? हरि नाम, हरि नाम मंत्र है, लेकिन वो आप बताइए तो क्या है वो मंत्र, मतलब कौन कह रहे हैं? रोम हर्षण। किससे कह रहे हैं? किससे कह रहे हैं रोम हर्षण जी? व्यास जी से। क्या कह रहे हैं कि हरि नाम मंत्र जो हरि नाम नाम वाला जो मंत्र आपने बताया है जो कि ब्रह्म पद की सिद्धि कर देता है वो आप मुझे बताइए तो कि आखिर है क्या वो हरि नाम मंत्र, होता क्या है? तो उत्तर में वेद व्यास जी बोले ग्रहणाद्यस्य मंत्रस्य देही ब्रह्ममयो भवेत, जिस मंत्र को ग्रहण करने से देही ब्रह्ममय हो जाता है, देही शरीर के अंदर जो जीव है ब्रह्ममय हो जाता है, ब्रह्ममय हो जाता है मतलब उसको ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है, मतलब शरीर के शरीर से ऊपर उठ जाता है। अभी हम शरीर के धरातल पर हैं तो फिर भेद देखते हैं, ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है, ये भारतीय है, ये काला है, ये गोरा है, ये अमरीकी है ना, तो ये हम जब शरीर की चेतना में होते हैं तो हम ऐसा देखते हैं, लेकिन जब हम ब्रह्म स्तर में आ जाते हैं, ब्रह्म के स्तर में आ जाते हैं तो हम ये नहीं देखते हैं। मनुष्य का शरीर हो, चाहे गाय का शरीर हो, चाहे कीड़े का शरीर हो, उसके अंदर कौन है? जीव है जो नित्य है और शरीर बदल रहा है, तो वो ब्रह्म भूत अवस्था होती है। ब्रह्म भूत अवस्था में वो व्यक्ति शरीर को बदलता हुआ देखता है कि ये शरीर सब बदल रहे हैं, जीव जो है शरीर में बंधा हुआ है और अपनी पहचान शरीर से कर रहा है और शरीर हमेशा बदल रहा है, जीव नहीं बदल रहा है, तो ये ब्रह्म भूत अवस्था है, ब्रह्ममय अवस्था है। तो ग्रहणादेश मंत्र से देही ब्रह्ममयो भवे, जिस मंत्र को ग्रहण करने से जो जीवात्मा है वो ब्रह्ममय हो जाता है। सद्यः पूतः शरापोपि, और शराब पीने वाला भी तुरंत पवित्र हो जाता है। सद्यः पूतः शरापोपि, शराब पीने वाला भी तुरंत पवित्र हो जाता है। सर्व सिद्धि युतो भवे, और सब प्रकार की सफलताएं उसे प्राप्त होती हैं। तदहं ते विधास्यामि महाभागवतो ह्यसि, तो उस मंत्र को मैं तुम्हें बताऊंगा क्योंकि तुम महाभागवत हो। ये किसने कहा? वेद व्यास जी ने। किससे कहा? रोम हर्षण से कहा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम् नाम्नाम् कलिकल्मषनाशनम् नाथः परतरोपायः सर्ववेदेषु विद्यते। कि ये 16 नाम हैं कलयुग का कल्मष नाश करने वाले हैं, इनसे बढ़कर के उपाय समस्त वेदों में और कहीं नहीं है। इति षोडशकम् नाम्नाम् कलिकल्मषनाशनम्, ये जो है ब्रह्मांड पुराण में इस तरह से हरे कृष्ण मंत्र मिलता है। अनंत संहिता में लिखा है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, षोडश ताने नामानि द्वात्रिंशत् वर्णकानि हि कलयुगे महामंत्रा सम्मतो जीवतारणे। ये अनंत संहिता में लिखा है कि 16 नाम है जो
32 अक्षरों वाले हैं, ये 16 नाम हैं, 32 अक्षरों वाले हैं। कलयुग ये महामंत्र है, कलयुग में यही महामंत्र है, सम्मतो जीव तारणे। उत्सृज्यतन महामंत्रम ये तुन्यत कल्पितम पदम महानामे ते गायंती ते शास्त्र गुरु लंघिना। तो पहली बात ये बताई कि कलयुग में यही महामंत्र है जो जीव का उद्धार करने के लिए शास्त्र सम्मत है। कलयुग में शास्त्र सम्मत महामंत्र जीवों का उद्धार करने के लिए यही है, जिसमें 16 नाम हैं और कितने अक्षर हैं, 32 अक्षर हैं। अब ये भी कहा उत्सृज्यतन महामंत्रम ये तुन्यत कल्पितम पदम, इस महामंत्र को छोड़ करके जो अपनी कल्पना से किसी दूसरे पद को महामंत्र का नाम देंगे, महानामे ते गायंती ते शास्त्र गुरु लंघिना, तो वे शास्त्र और गुरु का उल्लंघन करने वाले हैं। इस महामंत्र को छोड़ करके अपनी कल्पना से किसी दूसरे पद को महामंत्र का नाम देंगे तो वे गुरु का भी उल्लंघन करने वाले हैं और शास्त्र का भी उल्लंघन करने वाले हैं। मतलब कितनी कठोर चेतावनी, क्या महामंत्र का नाम किसी अपनी कल्पना से किसी और पद को नहीं दे सकते। जैसे कोई कहता है गायत्री महामंत्र तो गलत है, कलयुग में गायत्री महामंत्र नहीं है, है ना, कोई भी महामंत्र नहीं है कलयुग में। कोई कहता है सोहम, वेदों में वेद का तो वाक्य है, वेद का वाक्य है सोहम अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन महामंत्र नहीं है ना। तो कोई भी अपनी कल्पना से किसी भी पद को महामंत्र का नाम देंगे तो गुरु और शास्त्र का उल्लंघन करेंगे। कोई कहता है क्या है हमारे गुरुजी ने ये महामंत्र दिया, है ना, तो हो ही नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति अगर महामंत्र बताएगा कुछ भी अन्य पद को तो वो गुरु और शास्त्र का उल्लंघन कर रहा है, तो फिर कैसे गुरु बन सकता है, वो कैसे गुरु हो सकता है, है ना, ये बताया। सनत कुमार संहिता में बताया गया है, इसमें भी बहुत स्पष्ट बताया गया कि आप दूसरे प्रकार से इसको नहीं बना सकते। इसमें लिखा है हरे कृष्णो दुरावृत्तो कृष्ण तादृक तथा हरे, हरे राम तथा तादृक हरे पुनः। इसमें बताया है हरे कृष्णो द्विआवृत्तो, हरे कृष्ण को दो बार बोलना है, कैसे हरे कृष्ण कृष्ण तादृक तथा हरे, फिर कृष्ण को दो बार बोलना है कृष्ण कृष्ण, फिर हरे को भी दो बार बोलना है हरे हरे, हरे राम तथा तादृक हरे पुनः, फिर हरे राम को दो बार बोलना है, फिर राम को दो बार बोलना है, फिर हरे को दो बार बोलना है, हरे राम 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 हरे हरे, है ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, स्पष्ट है सनत कुमार संहिता में लिखा है। फिर भक्ति चंद्र का किस सप्तम पटल में ये बताया गया है, पानी है पानी, अच्छा हम दवाई भी देने वो गोलियां देने का, भक्ति चंद्रिका के सप्तम पटल में लिखा है अति मंत्र वरम बक्षे द्वात्रिंशत अक्षरान्वितम सर्व पाप प्रशमनम सर्व दुर्वासनानलम। इसमें बताया गया है कि अथ मंत्र वरम वक्षे, अथ का मतलब है अब मैं मंत्र वरम वक्षे, वक्षे माने बताऊंगा, क्या बताऊंगा, मंत्र वरम बताऊंगा, वर का मतलब श्रेष्ठ, मंत्र वरम, तो मैं आपको श्रेष्ठ मंत्र बताऊंगा, अब तो मैं आपको श्रेष्ठ मंत्र बताऊंगा, कैसा है वो द्वात्रिंशत अक्षरान्वितम, जो 32 अक्षरों वाला है, मैं अब आपको एक श्रेष्ठ मंत्र बताऊंगा जो 32 अक्षरों वाला है, सर्व पापे प्रशमनम, जो समस्त पापों का प्रशमन करने वाला है। सर्व दुर्वासना नलम, और सब प्रकार की दुर्वासना के लिए अग्नि है। अग्नि में क्या होता है, सब भस्म हो जाता है। तो ये मंत्र जो है सब प्रकार की दुर्वासना को भस्म करने के लिए क्या है, अग्नि है। सर्व दुर्वासना अनलम, मतलब अग्नि है, सब प्रकार की दुर्वासना को भस्म करने का, भस्म करने वाला अग्नि है ये मंत्र। चतुर्वर्गे प्रथम सौम्यम, ये जो है चतुर्वर्ग प्रदान करने वाला है। चतुर्वर्ग का मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष है ना। चतुर्वर्ग प्रथम सौम्यम, और सौम्यम का मतलब है कि बहुत उदार है। सौम्यम भक्तिदम प्रेम पूर्वकम, भक्ति प्रदान करता है, प्रेम पूर्वक भक्ति प्रदान करता है। भक्ति में आपको प्रेम तक ले जाएगा, ये जो मंत्र है ये भक्ति में प्रेम तक ले जाएगा, प्रेम पूर्वकम। भक्ति के अलग अलग सोपान होते हैं, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, 9 सोपान है ना। तो ये महामंत्र आपको कहाँ तक ले जाएगा, प्रेम तक ले जाएगा, भक्ति है, भक्तितम प्रेम पूर्वकम। दुर्बुद्धि हरणम, ये मंत्र कैसा है, दुर्बुद्धि हरणम, आपकी दुर्बुद्धि का हरण करेगा, चुरा लेगा दुर्बुद्धि है ना। हरण का मतलब यह है कि आप नहीं चाहते तो भी वो ले लेगा, उसको हरण बोलते हैं। आपको पता भी नहीं चलता है और कोई चीज चली जाती है, आपके जेब से निकल जाती है, आपके हाथ से निकल जाती है, तो उसको कहते हैं चोरी। तो महामंत्र चुरा लेता है, क्या चुरा लेता है, दुर्बुद्धि। आप अपनी दुर्बुद्धि को नहीं छोड़ना चाहते हैं लेकिन ये महामंत्र चुरा लेता है दुर्बुद्धि। अच्छा है, चाहते हो ऐसा हम नहीं छोड़ना चाहते तो भी वो चुरा ले। तो महामंत्र जो है दुर्बुद्धि हरणम, दुर्बुद्धि को चुरा लेगा। दुर्बुद्धि हरणम शुद्ध सत्व बुद्धि प्रदायकम, और ये शुद्ध और सत्व बुद्धि प्रदान करता है। सर्वाराध्यम, सर्व आराध्यम, सबके द्वारा ये आराधित है। सर्व सेव्यम, सबके द्वारा सेवित है, सब लोग सेवन करते हैं इसका, सब लोग इस महामंत्र की आराधना करते हैं और सब लोग इस महामंत्र की सेवा करते हैं, सेवन करते हैं। सर्वेषां काम पूरकम, सबकी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। सर्वाधिकार संयुक्तम, इस मंत्र को सब प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। सर्वाधिकार संयुक्तम सर्वलोक है कि बांधवम, सब लोगों का एकमात्र बांधव है। बांधव माने बहुत निकट का संबंधी, जो बहुत निकट का संबंधी होता है उसको बांधव बोलते हैं ना, भाई या अपने बहुत से कोई बहुत निकट का व्यक्ति होता है, बांधव कहते हैं उसको, बंधु और बांधव। तो सर्वलोक एक बांधव, एकमात्र बांधव यही है, एकमात्र बंधु ये, और कोई नहीं दूसरा। सर्वलोक एक बांधव, एकमात्र ये है बांधव। कितनी भी विपत्ति में आप हैं, लेकिन अगर आप याद करते हैं इस मंत्र को तो ये आप की सहायता करेगा। एकमात्र बांधो ये सर्वलोक है बांधवम और सर्वाकर्षण संयुक्तम, इसमें सब प्रकार के आकर्षण है। सर्व आकर्षण संयुक्तम, इस महामंत्र में सब प्रकार का आकर्षण है। अगर आप जो है अपराध रहे आप जाप करते हैं तो आपको फिर इसमें रस मिलेगा। दुष्ट व्याधि विनाशनम, जो बहुत ही दुष्ट व्याधियां हैं उनका नाश करता है। दीक्षा विधि विहीनम चा, दीक्षा विधि विहीनम, दीक्षा विधि की भी आवश्यकता नहीं इसमें। क्या कहें नहीं भाई जब मुझे दीक्षा मिलेगी तब मैं जप करूंगा, तो दीक्षा विधि की इसमें आवश्यकता नहीं है। इसलिए जब दीक्षा दी जाती है तो उसके पहले ही आप जप कर रहे हैं तभी दीक्षा दी जाती है। इसमें ये नहीं कि भाई दीक्षा विधि से ही आप जप करना शुरू करेंगे, दीक्षा की विधि के बिना आप जप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। दीक्षा विधि विहीनम, दीक्षा विधि की आवश्यकता नहीं है। फिर दीक्षा फिर क्यों दी जाती है, आपसे वचन लिया जाता है कि ये इसको आप जीवन भर करेंगे है? अग्नि के सामने आपको वचन देना होता है और वैष्णव हैं गुरु हैं, अग्नि वैष्णव गुरु ये साक्षी होते हैं, आप इनके सामने वचन देते हैं कि आप इसका जाप करेंगे, है ना। तो ये एक फोर्स होता है, दीक्षा एक फोर्स होता है कि आप जो कर रहे हो उसको करते रहोगे। दीक्षा कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि दीक्षा जब मिलेगी तब आप जप करना शुरू करेंगे, ऐसा नहीं। जो दूसरे मंत्र होते हैं वो दीक्षा के समय ही दिए जाते हैं, है ना। दीक्षा के पहले वो मंत्र जो है नहीं दिया जाता है, और आप करते हैं तो कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन इस मंत्र में ऐसा नहीं है कि दीक्षा के बिना हम नहीं करेंगे, भाई हमें पहले दीक्षा मिले तब हम करेंगे। इसमें दीक्षा विधि विहीनम और काला काल विवर्जितम, काल और अकाल से रहित है कि भाई ये अच्छा समय है इस समय जब करना है, ये समय अच्छा नहीं है जब करने के लिए, तो ऐसा इसमें नहीं है। अशुभ कहते हैं, अशुभ समय है इस समय हम ये काम नहीं करेंगे, अशुभ समय है। कोई शुभ समय का विचार करके हम जो है ये मंत्र जप करते हैं वो करते हैं, उस ये शुभ समय है इस मंत्र जप करने के लिए, ये शुभ समय है, तो ऐसा इसमें कोई विचार नहीं है। शुभ और अशुभ समय का कोई विचार नहीं है। काला काल है विवर्जितम, काल और अकाल का कोई विचार नहीं है इसमें। कि आप कहेंगे नहीं नहीं अभी तो जो है मेरे दिमाग में बड़ा अशुद्ध भाव आ रहा है, अब मैं जप नहीं करूँगा, अच्छा समय नहीं है, अभी अच्छा समय नहीं है, अभी तो हमारी जो माता जी का देहांत हो गया है अच्छा समय नहीं है, पिताजी का देहांत हो गया है या हमारे व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हो गया है तो अच्छा समय नहीं चल रहा है, इसलिए अभी जप नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं है कुछ भी। इसको जप करने के लिए अच्छे और बुरे समय का कोई विचार नहीं होता। काला काल विवर्जितम वांग मात्रेण अर्चितम, और इसकी पूजा बोलने मात्र से हो जाती है। वांग मात्रेण अर्चितम, आप नहीं भी जानते हैं कि ये क्या है तो भी इसकी पूजा हो जाती है बोलने मात्र से ही। जैसे अजामिल अपने पुत्र के लिए वो नारायण बोल रहा था तो भी पूजा हो गई, उसकी रक्षा हो गई, अपने पुत्र के लिए बोल रहा था। वांग मात्रेण अर्चितम, आपके अंदर पूजा की भावना नहीं है, आदर की भावना नहीं है तो भी आपने बोला तो उससे भी अर्चन पूजा हो जाती है इसकी। अगर अपराध नहीं किया तो, दस प्रकार के अपराध अगर आप नहीं करते हैं तो मात्र बोलने मात्र से ही इसकी पूजा हो जाती है। वांग मात्रेण अर्चितम बाह्य पूजा विधि अनपेक्षकम, बाहर की पूजा विधि की इसमें कोई आवश्यकता नहीं। बाहर की पूजा की विधि क्या है भाई, आचमनी है और घंटी है और जल है, वस्त्र है, फूल है, चमर है, पंखा है, ये सब बाहर की जो है पूजा की सामग्री होती है, इसमें कोई जरूरत नहीं है। बाहर से पूजा की किसी भी सामग्री की जरूरत नहीं है, केवल बोलने मात्र से ही पूजा हो जाती है। बाहे पूजा विधि अनपेक्षकम जिह्वा स्पर्शन मात्रेण सर्वेषां फलदायकम, जिह्वा का स्पर्श मात्र से ही सबको फल प्रदान करता है। हरि बोल। जिह्वा स्पर्शन मात्रेण सर्वेषां फलदायकम, देश काला नियमितम, देश काल का कोई नियम नहीं। देश का मतलब स्थान, ये स्थान जो है ज़्यादा अच्छा है तो यहाँ पर हम कीर्तन करेंगे, और ये स्थान अच्छा नहीं है, ये तो शराब, यहाँ तो शराब बेची जाती है, यहाँ वेश्यावृत्ति होती है, यहाँ तो जुआ होता है, यहाँ नशा, यहाँ व्यभिचार, ये ऐसा कुछ नहीं है। तो कोई स्थान का जो है विचार नहीं है इसमें, ये सब स्थान को पवित्र करता है। इसलिए प्रभुपाद कितने गंदे स्थान में गए, प्रभुपाद कितने गंदे स्थान में गए, जहाँ पर क्या है, व्यभिचार, जुआ, नशा और मांसाहार, वहाँ पर प्रभुपाद ने कीर्तन किया और सब पवित्र कर दिया, है ना। तो देश काल अनियमितम, 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 देश काल का नियम नहीं है, न समय का नियम है, भाई आधी रात में नहीं करना चाहिए। जैसे जब चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त थे रात भर कीर्तन करते थे, तो जो निंदक लोग थे वो निंदा करते थे कि जो है ये वैष्णव लोग जो है ये भगवान को बड़ा डिस्टर्ब करते हैं, रात भर कीर्तन करते हैं, भगवान इससे भगवान की निद्रा भंग होती है, तो भगवान इनको श्राप देंगे। तो उनके कहने से थोड़ी होता है कि भगवान साथ देंगे, भगवान की, भगवान जो है 24 घंटे आप बोलते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान की थोड़ी निद्रा भंग होती है। तो कोई कुछ भी अटकलबाजी करे इसमें तो सब कुछ होता होने वाला नहीं है। शास्त्र बताते हैं कि हर स्थान में आप इसका कीर्तन कर सकते हैं और हर समय आप इसका कीर्तन कर सकते हैं। देश काल अनियमितम सर्ववादी सुसम्मतम, सर्ववादी सुसम्मतम, सब प्रकार के वादियों के लिए भी सम्मत है। कोई भी वाद हो आपका, कोई नास्तिक वाद है, कोई नास्तिक भी है, निराकारवादी है, उस वो भी जो है उसका भी कल्याण करेगा, है ना। सर्ववादी सुसम्मतम। अथर्ववेद की पिपला शाखा में ये बताया गया है, सुनाम मूल मंत्रेण सर्वम ह्रदयति विभु स एव मूल मंत्रम जपति हरिरिति कृष्णेति रामेति। इसमें क्या बताया गया है कि सुनाम मूल मंत्रेण सर्वम ह्रदयति विभु, विभु का मतलब भगवान, भगवान सबको आनंद प्रदान करते हैं। कैसे, स्वनाम मूल मंत्रेण, अपने नाम के मूल मंत्र के द्वारा सबको आनंद प्रदान करते हैं भगवान। भगवान का जो नाम है वो मूल मंत्र है, तो ये भगवान का जो नाम है ये मूल मंत्र है। मूल मंत्र समझते, मूल का मतलब जड़ है, सब मंत्रों की जड़ है, तो मूल है, मूल से ही सब जगह जो है शक्ति मिलती है, जड़ से ही मिलती है ना शक्ति। तो सुनाम मूल मंत्रेण सर्वम ह्रदयति विभु स एव मूल मंत्रम जपति, तो भगवान अपने मूल मंत्र के द्वारा, अपने नाम रूपी मूल मंत्र के द्वारा सबको आनंद प्रदान करते हैं। स एव मूल मंत्रम जपति, और वे स्वयं भी मूल मंत्र का जप करते हैं, वे स्वयं भी मूल मंत्र का जप करते हैं। हरि रीति कृष्ण इति राम इति, अच्छा एक माला जप कराना है, अच्छा ठीक है एक माला जप कराएंगे। तो हरि रीति कृष्ण इति राम इति, हरि कृष्ण और राम, ये मूल बीज मंत्र, इस मंत्र के तीन बीज हैं हरे कृष्ण और राम, तो वे स्वयं जप करते हैं चैतन्य महाप्रभु रूप में। नहीं मैं कराऊं जब, या आप लोग कराएंगे, मैं कर रहा हूँ। अच्छा कितने बजे? 9 बजे समाप्त करना है, 9 बजे तक पुनो। अच्छा तो ठीक है, अब समय नहीं है, तो मैंने काफ़ी आप लोगों को बताया हरे कृष्ण मंत्र के बारे में, आप लोगों को काफ़ी शास्त्रों के प्रमाण दिए, ठीक है। तो अब हम लोग एक माला जप करेंगे, तो जिनके पास माला है, जिनके पास माला है तो ये माला पर जप करेंगे, और जिनके पास माला नहीं, वाले देव की।